अंजना
की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौधरी प्रेम आनंदे। ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्त। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजे साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 23 श्लोक संख्या 38। आवृत्ति करें शब्दार्थ सर्वप्रथम। वैचित्र वीर्य अभिहितम् महत् महात्म्य सूचकम् अस्मिन् कृतम् अतिमर्त्यम् पार्थविम् गतिम् आप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितम् महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थविम् गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितम् महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यम् पार्थिवीं गतिमाप्नुयात्। वैचित्रवीर्यम् हे विचित्रवीर्य के पुत्र विदुर जी, अभिहितम् कहा गया, महत् महान, महात्म्य महानता, सूचकम् उद्बुद्ध करने वाला, अस्मिन् इस प्रसंग में, कृतम् किया हुआ, अतिमर्त्यम् असामान्य, पार्थिवीं पृथु महाराज के संबंध में, गतिम उन्नति आपनुयात प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज पृथु के समान भगवान के धाम को जाता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में आया हुआ श्रावयत शब्द इंगित करता है कि मनुष्य को केवल स्वयं पढ़ना, न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए, वरन अन्यों को भी पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपदेश कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अभ्यास की संस्तुति की है, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 7 श्लोक पयार संख्या 128। जिससे भी मिलो उससे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के वृतांत को सुनाओ। पृथु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृतांत के समान ही शक्तिदायक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं तथा पृथु महाराज के कार्यकलापों में अंतर न माने और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के विषय में सुनने के लिए अन्यों को प्रेरित करें। केवल अपने हित के लिए उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े पर अपितु अन्यों को भी उसके विषय में पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित करे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। दीर्घकाल के बाद भगवान राधारास बिहारी के चरण कमलों में बैठकर कुछ कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। प्रसंग प्रस्तुत प्रसंग में कथा समाप्त हो गई है पृथु महाराज की और पृथु महाराज के कथा श्रवण करने की फलश्रुति क्या है, सुनने के बाद कुछ फल की इच्छा रखते हैं लोग, हम ये काम करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा क्या फल मिलेगा। कह दिया जाए कुछ नहीं मिलेगा तो लोग काम करना बंद कर। इसलिए प्रत्येक भागवत के या किसी भी कथा के प्रत्येक प्रसंग के अंत में फल श्रुति दी जाती है, इससे सुनने का लाभ क्या है। लाभ का काम सबको पसंद है, इसलिए मैत्रेय जी परम भागवत श्री विदुर जी से इस कथा के श्रवण करने का क्या फल है से सुना रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप सब लोग पृथु महाराज के लीला का दिग्दर्शन भागवत के आलोक में करते आए हैं। बहुत ही उपादेय अवतार है। यसुरों का विनाश करना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, इसके लिए अन्य अवतार होता है, लेकिन महाराज पृथु का जो अवतार है वो असुरों के लिए भी, देवताओं के लिए भी, पितरों के लिए भी, कीड़े मकोड़े से लेकर समस्त 84 लाख जीव जंतुओं के कल्याण के लिए ये अवतार हुआ। सब लोग मर रहे थे, अन्य अवतार किसी वर्ग विशेष के लिए, संतों की रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना है या धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए होता है। परंतु ये अवतार इतना उदात, इतना महिमा मंडित, इतना उदार अवतार है कि प्रकृति पृथ्वी के सृष्टि के समस्त जीवों के कल्याण के लिए ये अवतार हुआ। देवता भी भोजन प्राप्त करते हैं पृथ्वी से निकली हुई वस्तु का, पितर भी प्राप्त करते हैं। और जिस समय महाराज पृथु का अवतार हुआ, प्रकट हुए, आप कथा तो जानते ही हैं, मैं क्या पीछे जाऊं। जिनसे अवतार हुआ वो बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, शिशिराधा रास बिहारी जू की जय। और उसके अत्याचार से पृथ्वी ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। ये पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम, ये भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु के कारण पृथ्वी शब्द आया। और सृष्टि में पहले सबसे पहला राजा हुए महाराज पृथु। एक आदर्श राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए प्रजा के लिए। तो बेन के अत्याचार से समस्त प्राणी भूख से छटपटा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में बेन के जांघ को मथने के बाद भगवान का ये अद्भुत अवतार हुआ, पृथु अवतार। बंदीजनों ने बहुत सुंदर स्तुति की, ब्राह्मणों ने, मुनियों ने भगवान की स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। और तत्काल जो समस्त प्रजा थी वो हाय हाय कर रही थी, महाराज भोजन तो चाहिए कम से कम। संसार में भी लोग कहते हैं, भूखे भजन न हो ही गोपाला। गोपाल जी से ही डायरेक्ट कहते हैं, भगवान से ही कहते हैं, भूखे भजन नहीं, वास्तव में नहीं होगा। लेकिन तकलीफ ये है कि खा लेने के बाद भी नहीं होता है, भूखे भी नहीं होगा और बहुत खा लेने के बाद भी नहीं होता है। लेकिन वास्तव में ये जो है, मैं बोला, ये कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि किसको भोजन नहीं मिलता है ऐसा लग रहा है। वो लोग कहते हैं जिनको लगता है भोजन मिला ही नहीं है इसलिए भजन नहीं करते। सब लोग खा रहे हैं, परंतु भजन तो वो करता है जिस पर भक्त और भगवान की कृपा है। इसके लिए भोजन आवश्यक है, परंतु परम आवश्यक नहीं है। तो प्रजा जो है, समस्त प्रजा भूख से व्याकुल थी, और ऐसी स्थिति में भगवान पृथु का अवतार हुआ। सब लोग कहने लगे, महाराज मर जाएंगे भूख से। भगवान ने शरीर बनाया और इसके भीतर एक अग्नि भूख दिया, जठरानल कहते हैं, अद्भुत आग है। बाहर का आग है, ईंधन डाल देंगे तो बल जल जाएगा, और ये ऐसा आग है कि ईंधन डाल देंगे तो कुछ समय के लिए बुझ जाएगा, और ईंधन नहीं डालेंगे तो जल जाएगा। प्रकृति अलग है। कम भी पड़ जाए आग तो लोग दवा खाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रहा है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो, पुरुषोत्तम योग में पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उन्हें मैं वो भूख हूं। भगवान यदि भूख के रूप में आपके शरीर में विद्यमान न हो तो समस्त भोजन सामग्री होते हुए भी आप खा तक नहीं सकते हो, पचाने की बात दूर रही। तो भगवान कहते हैं, पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं भूख हूं और सबके प्राणियों के भीतर स्थित रह करके चार प्रकार के चोष्य चर्व्य लेह पेय, ये चार प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूं। तो भूख तो थी, परंतु भोजन नहीं था। पृथ्वी ने, प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। और ऐसी स्थिति में राजा बनने के तुरंत बाद महाराज पृथु ने देखा कि प्रजा व्याकुल है, तो भूख लगी हो उसको खूब उपदेश दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो वो सुनेगा नहीं। भगवान बुद्ध के पास कोई गया तो शिष्यों ने बहुत उपदेश देना चालू किया, ज्ञान की बात, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भगवान सच्चिदानंदमय हैं, ये तुम माया में फंसे हो, ये हो वो हो। बाद में उससे पूछा गया कुछ समझे, उसने कहा कि महाराज बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बुद्ध के पास लेके गए, बोले महाराज ये तो बिल्कुल महामूर्ख व्यक्ति है, कुछ नहीं समझता है। तो बुद्ध ने कहा ज्ञान देने के पहले इसको प्रसाद खिलाओ, भोजन कराओगे जब ठंडा दिमाग हो जाएगा ना तब कुछ बातें समझ में आएगी, इसको भूख लगा है। तो भगवान पृथु ने देखा कि प्रजा व्याकुल है और पृथ्वी अन्न देना, औषधि देना, भोजन देना बंद कर दी। वास्तव में पृथ्वी जो है समस्त प्राणियों का, केवल मनुष्य का नहीं, समस्त प्राणियों के भोजन की, भोजन देने का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, भगवान ने पृथ्वी को दिया है। कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक, पितर तक, सब पृथ्वी से भोजन प्राप्त करते और बेन के अत्याचार से पृथ्वी ने भोजन देना बंद कर दिया। बहुत बड़ी समस्या थी। आप विचार कीजिए, इस समय यदि स्थिति आ जाए कि बिल्कुल अन्न उत्पन्न न हो तो क्या स्थिति हो। एक दिन एकादशी उपवास करने में, हाँ, वो भी फलाहार करने के बाद पेट सूख जाता है, पारण का समय देखने लगते हैं कितने बजे, हाँ, कहीं दो दिन चार दिन न हो, क्या स्थिति होगी, आप विचार करो। सब कुछ हमारा जीवन भगवान के ऊपर निर्धारित है और जिलाने का, खिलाने का, पालन पोषण करने का संपूर्ण विभाग भगवान ने पृथ्वी देवी को सौंपा है। एक एक विभाग है और वह पृथ्वी देना बंद कर दी तो भगवान ने उसको तुरंत पृथ्वी को दंडित करने के लिए बोले, मैंने ब्रह्मा के द्वारा नियम बनाया है कि तुम जीवों का पालन करो, क्यों नहीं दे रही हो। और महाराज पृथु राजा बनते ही धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके, मैं अति मर्त्यानी पर कह रहा हूं, इसमें एक शब्द है जो मर्त्य, अति मर्त्यानी, अति मर्त्यम, कोई भी मरण धर्मा मनुष्य जीव इस काम को नहीं कर सकता है। तो जो नहीं करे उसको अति मर्त्य कहते हैं। ऐसे अति मर्त्य कृतम कार्य को पृथु महाराज ने किया, मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी, शायद दया आ जाए, लेकिन जैसे यमराज भगवान काल समस्त प्राणियों के पीछे पीछे लगे रहते हैं, पृथ्वी जहां भी भाग कर गई उसने देखा मैं महाराज पृथु सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है। महाराज पृथु ने कहा, मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ नहीं सकता हूं। पृथ्वी ने कहा कि महाराज मुझे मार देंगे तो बाद में इस सृष्टि का क्या होगा। बोले, तुम जीवों को भोजन देना बंद क्यों की हो। यदि तुमने अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से च्युत हो गई हो, गिर गई हो, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करती हो तो तुम्हें निश्चित मारूंगा। पृथ्वी ने कहा तो फिर पालन कैसे करेंगे, मान लीजिए पृथ्वी नष्ट हो जाए तो पालन कैसे होगा। पृथु महाराज ने कहा मैं जो तुम्हें पृथ्वी के द्वारा जीवों का पालन कर रहा हूं बिना पृथ्वी का भी कर सकता हूं। आप विचार कीजिए, घास है बहुत सारे पशु खाते हैं, परंतु गाय खाती है तभी दूध बनता है। तो जो घास के द्वारा गाय में दूध बना सकता है, गाय के शरीर के द्वारा दूध का निर्माण कर सकता है, क्या वो बिना गाय का दूध नहीं बना सकता? भगवान कुछ भी करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। करने लायक भी कर सकता है, नहीं करने लायक भी कर सकता है, और सब कुछ कर सकता है। अति मृत्यु बोले, अब तक मैं तुम्हारे द्वारा पालन करता था जीवों का, परंतु तुम कर्तव्य च्युत हो गई हो, तो अब तुम्हारा विनाश करके और स्वयं मैं पालन करूंगा। पृथ्वी देवी ने कहा महाराज प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, और मैं कंस के इस संसार, मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचारी असत राजा और प्रजा भी असत हो गई थी, इसलिए मैंने यज्ञ की संरक्षण करने के लिए मैंने समस्त औषधियों को अपने भीतर छुपा कर रखा। सारी औषधि हमारे भीतर है, परंतु उसको निकालने के लिए आप कुछ कीजिए। और भगवान ने भागवत में विस्तार से वर्णन है, आपने सुना होगा, भगवान ने अलग अलग बछड़ा बनाया और पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए, समस्त वर्गों के लिए उन्होंने भोजन निकाला पृथ्वी से। तो ये अति मर्त्य लीला है, इसमें मैत्रेय जी जो संबोधन करते हैं वैचित्र वीर्य शब्द, विदुर जी के पिताजी का नाम है विचित्र वीर्य, वास्तविक पिता तो ये नहीं है, वास्तविक पिता तो भगवान वेदव्यास देव हैं, जिनके कृपा दृष्टि से श्री विदुर जी का जन्म हुआ है दासी के गर्भ से, परंतु फिर भी माता है तो पिता तो कहना पड़ेगा। इस संबंध से वैचित्र वीर्य कहते हैं कि तुम विचित्र वीर्य के पिता पुत्र हो, और यह लीला भी विचित्र वीर्य की है। वीर्य का अर्थ होता है जिसका सामर्थ्य, जिसकी शक्ति, जिसका प्रभाव विचित्र हो, उसको विचित्र वीर्य कहते हैं। और विचित्र का अर्थ ये क्या होता है, बोले जिसका चित्र न खींचा जा सके उसको विचित्र कहते हैं। हाँ प्रभु, कह रहे हैं कैमरा के अंदर जिसको नहीं लिया जाए वो विचित्र है। दो अर्थ करते हैं विद्वान लोग, विविधा चित्रा यस्य स विचित्रा, विविध अनंत प्रकार के चित्र जिनके हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, अभी आप देखो, एक क्षण के बाद ही उनका सौंदर्य बदलता है, माधुर्य बदलता है, उनका सब कुछ क्षण क्षण नवायमान, नित्य नूतन सौंदर्य जिनके अंदर है उनको विचित्र कहते हैं। भगवान, संसार तो विचित्र है, परंतु भगवान अति विचित्र है। और ये विचित्र वीर्य के पुत्र हैं, श्रोता जो हैं विचित्र वीर्य के पुत्र हैं विदुर जी। भगवान के बहुत बड़े भागवत हैं, और भागवत का जो तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद है, इसके वक्ता हैं मैत्रेय जी और वक्ता हैं श्रोता हैं श्री विदुर जी। सामान्य व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन रहा है, श्रोता कितना महान है जिसके घर भगवान बिना निमंत्रण के जा चुके हैं। बिना आमंत्रण के दुर्योधन के भोग न पायो सूखे साग विदुर घर का। बहुत निमंत्रण नहीं दिया था विदुर जी ने, भगवान अपना घर मान करके विदुर जी के घर गए थे। ऐसे विदुर जी अंतिम समय में भगवान ने याद किया था मैत्रेय जी को और श्री उद्धव जी के साथ अंतिम लीला करते समय, और मैत्रेय जी को विशेष रूप से आदेश दिया था कि तुम मेरी लीला कथाओं को श्री विदुर जी से सुनाना। उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा में थे, तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार में इनसे भेंट हुई और वहीं पर ये भागवत का तृतीय और चतुर्थ स्कंद की चर्चा हुई है। श्रोता भी महान है और वक्ता भी इस प्रसंग के महान है, इसलिए इसकी जो फलश्रुति है वो भी महानतम है। आप पीछे से सुनते आ रहे हैं, संसार में भी भगवान के धाम में मरने के बाद आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही, संसार में भी व्यक्ति यदि धनम जनम कविताम सुंदरीम किसी भी चीज की इच्छा करता है, विद्या की इच्छा करता है और जो भी राजा बनना चाहता है तो उसे पृथु महाराज के चरित्र को सुनना चाहिए, निश्चित रूप से वो प्राप्त करेगा। लोक भी और अंत में परलोक भी भगवान के चरण कमलों को भी प्राप्त करेगा। ये कथा सुखदेव गोस्वामी, हम लोग कभी कभी चूंकि अपने मन की जो श्रद्धा है प्रेम है वो थोड़ा सीमित है, दिमाग का जो बर्तन है वो लिमिटेड है, तो हम लोग इस पर विचार करने लगे थे हैं क्या सही में मिलेगा। अब जैसे इसके पहले में है कि जो इस महत्वपूर्ण कथा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है वह सपृथो पदवी मयात, वह पृथु महाराज के पदवी को प्राप्त करता है। अर्थात पृथु महाराज की जो गति हुई भगवान के धाम में जाने का केवल सुनने मात्र से, पृथु महाराज कितना तपस्या की आपने सुना होगा, अष्टांग योग का आश्रय लिए, कितने बड़े राज्य किए, राजसूय यज्ञ किए, पृथ्वी का दमन किए और अनेक प्रकार के अति मर्त्य लीलाओं को किया, सनकादिकों से मिले, उनसे उपदेश सुने क्या क्या, और उस उपदेश के अनुसार तपस्या किए, ये सारा कार्य केवल कथा सुनने से मिल जाएगा आपको। जंगल में गए, योगासन किए, आसन ध्यान धारणा क्या समाधि, और उनकी पत्नी भी उनके साथ सती हो गई। बहुत बड़ा प्रयास, पृथु महाराज बहुत बड़े राजा हुए, एक छत्र पृथ्वी के सम्राट हुए, यहां तक कि उनके यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हुए, स्वयं भगवान, और इंद्र ने बहुत तकलीफ दिया था। कथा आप सब जानते हैं इसलिए मैं संक्षेप में दिग्दर्शन और पाखंड का जो जन्म हुआ, आज आप जो पाखंड देखते ना, पाखंड माने पाप का खंड, खंड माने चिन्ह होता है, जो पाप का चिन्ह है लाल वस्त्र धारण करना, अनेक प्रकार का भस्म चिता क्या क्या लगाना, ये सारा पाखंड देवराज इंद्र से चालू हुआ है। और पृथु महाराज के भय से वो पाखंडी का वेश धारण किया, वही पाखंड का फाउंडर आचार्य है इंद्र, देवराज इंद्र। और कारण क्या था, बोले पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में विघ्न डालना था, विघ्न कौन डाल रहा है, बोले 33 करोड़ देवताओं का राजा स्वर्ग में निवास है परंतु वो पृथु के यज्ञ को नष्ट करना चाहते। कल्पना कीजिए, पाखंड को बढ़ते देख अंत में भगवान पृथु महाराज मारने के लिए चले। भगवान ने समझाया, दो में यदि एक भी समझदार हो तो काम चल जाएगा, दोनों ना समझ हो तो फिर क्या समझाना। अद्भुत चरित्र है। भगवान कृष्ण ने पृथु महाराज से कहा, वो पाखंड का रूप बनाना बंद नहीं करेगा, तुम यज्ञ बंद कर दो। और अंत में इंद्र के साथ क्षमा मांगने के लिए भी आए हैं, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मूर्ति अनेक प्रकार के अनंत गुणों से संपन्न महाराज पृथु का चरित्र है, इसलिए यहां पर दो शब्द दिया गया इस कथा के लिए, महान महात्म सूचकम। महान लोगों के महिमा का महात्म की सूचना देता है, एक महापुरुष कैसा होता है, एक राजा कैसा होता है। और राजा का अर्थ ये नहीं है कि बस दुनिया भर की संपत्ति जुटावे, राज्य करे, कैसे प्रजा का पालन करे और अंत में सब कुछ छोड़कर सर्वस्व परित्याग करके किस तरह से जंगल में जाकर के तपस्या करे, भगवान को प्राप्त करे, ये राजा का कर्तव्य है। आप विचार करो, आज तो कौड़ी की झोपड़ी जिसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है उसको भी छोड़ना मुश्किल है। विश्व ब्रह्मांड के सारे दुख जिसमें भरे हैं उसको भी कहा जाए छोड़ दो, अरे छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, एक घंटा छोड़कर मंदिर में आओ तो लोग नहीं आ सकते। तो महाराज पृथु का जो ये चरित्र है, महान महात्म्य, राजा बने तो खूब उत्साह से प्रजा का शासन, पृथ्वी पर शासन, सबको आनंद देना, बहुत सुंदर उपदेश है पृथु महाराज का। एक राजा को किस तरह से अपने प्रजा का उपदेश करना चाहिए, आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ और अंत में आदर्श त्यागी। त्याग भी दिखाया। इसलिए महान महात्म सूचकम। और इतना सुंदर सुमहत पुण्यम कहते हैं, यह सुष्ठु है, सुंदर है, महत है, महान है। और पुण्य का अर्थ होता है श्रवण मात्र से ही जीवन में पवित्रता आ जाती है। किसके जीवन में? बोले श्रृणुयात श्रावयेत, जो सुनता है उसके जीवन पवित्र हो जाएंगे और जो सुनाता है वो भी पवित्र हो जाएगा। तो बहुत सुंदर, ब्राह्मण वर्चस्वी हो जाएगा, क्षत्रिय जगत का ईश्वर हो जाएगा, वैश्य बहुत धनी हो जाएगा और शूद्र जो है सबका भक्त हो जाएगा। कहते हैं तीन बार यदि इस चरित्र को सुन लिया जाए तो व्यक्ति धनी हो जाएगा। तो मैं बीच में कह रहा था आपको, हम लोगों को लगता है कि ऐसे ये कह दिया गया है, पता नहीं, हमने तो बहुत कथा सुनी, रोज सुनते हैं, किधर धनी हो गए। अश्रद्धा होती है हमारे अंदर। परंतु आप विचार करो, गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी विश्व ब्रह्मांड से आए हुए ऋषियों, जो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानते थे, उनके सामने इस कथा को परीक्षित के सामने कह रहे हैं। यदि थोड़ी भी गलत बात होती तो कोई न कोई तो उंगली उठाता, आप ऐसा क्यों कहते हो गलत, किसी ने उंगली नहीं उठाई, नहीं उठाता। अथवा इस कथा को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, उस नैमिषारण्य में 80,000 ऋषि बैठे हैं, ऋषयो मंत्र द्रष्टार त्रिकालदर्शी ऋषि। अरे महाराज, 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किए थे इसी कलयुग में, और उस कलयुग में इसी कलयुग में जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में 1000 वर्ष का यज्ञ था। बोले एक समस्या थी कि भाई 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं सत्रम सहस्रम सममास नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममास सहस्रम समम 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ और उस यज्ञ में एक मान लीजिए समस्या आ सकती थी कि 1000 वर्ष तक चल रहा है और 2-4 हजार नहीं है 80 हजार ऋषि बैठे हैं और बीच में किसी का समय पूरा हो गया तो मान लीजिए हवन कुंड पर बैठे हैं स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और उसी समय किसी का समय खत्म धड़ाम से बेचारा गिरेगा तो वहां यज्ञ होगा कि फूंकना पड़ेगा जलाना पड़ेगा तो यज्ञ में बाधा हो जाएगी। इसीलिए इतने सामर्थ्यवान शक्तिशाली ऋषि थे कि उन्होंने मृत्यु के देवता मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता यमराज को ही उस यज्ञ में आमंत्रित कर दिया था। बोले जब ये संजमनीपुरी से यहां रहेंगे तो केवल ऋषि नहीं विश्व ब्रह्मांड का कोई भी जीव मरेगा ही नहीं। एक हजार वर्ष तक किसी को नहीं मरना था। उस ऋषियों के बीच में सूत गोस्वामी इस प्रसंग को कह रहे हैं यदि थोड़ा भी फलश्रुति में च्युति होती गलती होता तो तुरंत उंगली उठाते अरे महाराज ऐसा क्यों कहते हो। और साक्षात भगवान के साथ रहने वाले मैत्रेय जी इसके वक्ता हैं, भगवान के परम भक्त विदुर जी इसके श्रोता हैं। तो अत्यंत महान लोगों के बीच में यह प्रसंग चल रहा है। सौभाग्य से वही प्रसंग प्रभुपाद जी के और वरिष्ठ अधिकारियों के शुभकामना से सहयोग से हम लोगों को भी श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। यह सब सत्य फलश्रुति है, मिलता है। और जो जो कहा गया ना प्रभु जी ये सब कुछ बिना मांगे बहुत लोगों को मिल गया है। परंतु सबसे बड़ा गिफ्ट जो है दान है अंत में ये कहते हैं मुक्तान्य संगो भगवत अमलाम भक्ति मुद्वहत। इस प्रसंग का जो श्रवण करेगा संसार में किसी दान से किसी पुण्य से किसी धर्म से जो वस्तु उपलब्ध नहीं होती है वह निर्मल भगवान के चरण कमलों में भक्ति उस जीव को प्राप्त होगा। यह यूनिक गिफ्ट है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर भी मिल जाएगा धन भी मिल जाएगा जो भी है मिलेगा परंतु भगवान की जो भक्ति है हम लोगों के ललाट पर जो तिलक है गले में कंठी है यह तो प्रारब्ध में नहीं लिखता। तो केवल भक्तों की और भगवान की हेतु की कृपा से प्राप्त होता है। तो यहां पर मैत्रेय जी कथा कह रहे हैं और विदुर जी श्रोता हैं कहते हैं जो व्यक्ति इस पृथ्वी चरित्र का श्रवण करेगा कितना सस्ता साधन है। कहने वाला एक व्यक्ति है और लाभ लाखों को मिलता है। तपस्या का लाभ मिल जाएगा और क्या क्या सब लाभ वो मिलेगा जो पृथ्वी को मिला। पार्थविम गतिम पार्थविम का अर्थ होता है जो पृथ्वी महाराज की जो गति हुई वो गति प्राप्त हो। कैसे बोले बैठ करके सुन लेने से। प्रभुपाद जी ने इसके पहले भी लिखा है और बहुत जगह पर लिखते हैं कि व्यक्ति जो सुनता है वही बनता है। जीवन में आपने जो सुना है वही बने हो इससे अधिक आप बन नहीं सकते हो। इसलिए पृथु महाराज का चरित्र सुनेंगे तो पृथु महाराज का गुण हमारे अंदर आएगा, पृथु महाराज की गति को हम प्राप्त करेंगे। संसार में भी देखो, दुष्टों की बात आप सुनोगे तो आपको दुष्ट बनने में देर नहीं लगेगी, और संतों की बात सुनोगे, भक्तों की बात सुनोगे तो भक्त बन जाओगे। इसीलिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, प्रत्येक भक्तों का ये पावन पुनीत कर्तव्य है कि जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार एई देश। महाप्रभु ने स्टैंप दिया, मैं जारे देख जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश। कृष्ण का उपदेश का अर्थ है भगवान ने जो गीता में या भागवत में बहुत जगह अपना कहा है उसका उपदेश करो। प्रभुपाद जी दो इस प्रपर्ट में दो जगह शुरू में भी लिखे हैं, केवल स्वार्थी बनकर के पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दो बार, टू टाइम्स उन्होंने रिपीट किया है, आपने सुना होगा, प्रपर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से जो भागवत की कथा को, श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जीवों में जो बांटता है वो भगवान का परम प्रिय व्यक्ति होता है। गीता में भगवान की प्रतिश्रुति है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति से अन्य कोई भी मेरा प्रिय नहीं होगा जो मेरे संदेश को संसार में वितरण करेगा। और भागवत में गोपीजनों ने तो इतना तक कह दिया, संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति वही है जो भगवान की लीला कथा का वितरण करता है, क्योंकि इससे बड़ा कल्याण करने वाला संसार में दूसरा कोई भी साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, संसार जल रहा है और इस जलते संसार में यदि भगवान की लीला कथा और भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं किया जाए तो संसार और दुखी हो जाएगा। और इसके करने वाले कितने महान हैं, महाआत्मा कहते हैं, महात्मा। संसार के लोग एक पद्य कहते हैं, बोले संसार में आग लगा हुआ है, जहां देखो वहां आग लगा है, भले एयर कंडीशन में लोग बैठे हैं परंतु दिमाग जल रहा है। और हम लोगों के पास साधारण हवा है लेकिन वास्तविक एसी में बैठे हैं हम लोग, एसी मतलब अभय चरण दोनों तरफ, डबल एसी लगा है, इधर भी एसी है, सामने भी एसी है। तो भक्त वास्तव में एसी में है, और वो एसी तो ऐसा है, ऐसी है कि ऐसी है पता नहीं जो भी है, परंतु इससे चमड़े तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन दिमाग को ठंडा तो करना बड़ा मुश्किल काम है। दिमाग को ठंडा करना है, जीवन को ठंडा करना है, अपने को ठंडा करना है, दूसरे को ठंडा करना है, तो इसके लिए है कृष्ण उपदेश और कृष्ण हरिनाम का उपदेश करना। ये भी कृष्ण का उपदेश, सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान का ये उपदेश है, मेरा कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, समय शांत होने का उपदेश कर रहा है, वाणी को विराम करता हूं। यदि किसी भक्त को कोई कुछ,
हरे कृष्ण, प्रवचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिज्ञासा यह है, पृथु महाराज भगवान के शक्ति ऐसा अवतार हैं और ये जानते थे कि जो सौ यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, तो फिर पृथु महाराज को सौ यज्ञ से क्या लेना देना था, वो सौ यज्ञ ही क्यों करना चाहते थे?
वेरी सिंपल एंड शॉर्ट आंसर इसका है, एक राजा को यज्ञ करना चाहिए। तो जब राजा का एक भगवान के अवतार तो है ही, साथ साथ एक राजा का अभिनय करना है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, इसलिए और वो भी जो यज्ञ हो रहा था वो इंद्र बनने के लिए नहीं हो रहा था, कि पृथु महाराज जो यज्ञ कर रहे थे वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले भी वर्णन है पृथु महाराज ने जो भी किया वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो करता है उसको ये देवराज इंद्र आदि तो ये कोई।
मेरा कथन ये है कि कोई ये एक यज्ञ भी कर सकता है, दस भी कर सकता है, लेकिन सौ से क्या लेना देना, क्या सौ से आगे भी जा सकते हैं, ये प्रश्न है।
सौ यज्ञ के इसलिए सौ यज्ञ पूरा कर रहे थे वो, राजा को सौ यज्ञ करना चाहिए लेकिन इंद्र बनना ये उनका लक्ष्य नहीं था। जो भी यज्ञ था भगवान अब सौ ही कर रहे थे कि आगे भी करते, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। सौ पर इंद्र को ईर्ष्या हो गई। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि सौ ही करते या सौ ही करना चाहिए। इंद्र बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है कि सौ करेगा वो इंद्र बन जाएगा, तो ये पता नहीं इंद्र को क्या होता रहता है, कोई भी थोड़ा तपस्या किया तो इसका दिमाग गर्म हो जाता है। नारद जी भी एक बार तपस्या करने लगे तो सोचा कि तो कोई भी थोड़ा सा उग्र तपस्या करने लगा तो वो सोचता है कुर्सी हिली चेयर गया। देवराज इंद्र है, इसको खुश होना चाहिए और जानना चाहिए कि पृथु महाराज, भागवत में लिखा है कि जो भगवान की भक्ति का आनंद ले चुका है उसे इंद्र लोग आती जो है एकदम नाली के कीड़े जैसा लगते हैं। तो महाराज जो पृथु का जो यज्ञ था वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उस यज्ञ क्यों करते थे ये भी भागवत में आपने सुना होगा, इसलिए करते थे कि उस बहाने उस यज्ञ में संत आएंगे, भक्त आएंगे और भगवान की लीला कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। और इसका प्रमाण है भगवान जब साक्षात इंद्र के साथ प्रकट हुए हैं तो भगवान ने कहा यज्ञ कर रहे हो मेरी प्रसन्नता के लिए ना, मैं खुश हूं, वरदान मांग लो। कहते हैं आप वरदान शिरोमणि हैं, वरदेश्वर हैं और आप सब कुछ दे सकते हैं, समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगता हूं, आपके दिव्य लीला कथा को श्रवण करने के लिए एक कान से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, 10 लाख कान देने की व्यवस्था कर। इंद्र बनने की थोड़ी भी इच्छा होती।
हरे कृष्णा, जैसे कि इंद्र ने पृथु महाराज को इसमें डिस्टर्ब करते हैं ना, वास्तविक इंद्र ने पृथु महाराज को यश को फैला रहा है। अगर इंद्र समझे इंद्र करने के नाते तो पृथु महाराज का सारा दुनिया में यश फैलता है, और इंद्र नहीं करता था तो लोग पृथु महाराज को ऐसे जानते थे, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे।
प्रभु जी इंद्र का तो पृथु महाराज का तो यश फैलाया लेकिन दुनिया का तो सर्वनाश कर दिया। जो इस इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराने में और भय करने में जो आज जितने पापी और पाखंडी हैं, एक इंद्र का जस फैलाने के लिए करोड़ों लोगों को नरक में डाल दिया और डाल रहे हैं। है ना, विचार करने लायक बात है कि नहीं। इन पृथ्वी महाराज का जस तो फैल गया लेकिन उस पाखंड के कारण आज कितने लोग, लाखों लाखों लोग भगवान के चरणों से विमुख हैं और भक्ति से विमुख हैं और नरक में जा रहे हैं। इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो इंद्र के पास जाता है। एक पृथु महाराज का जस फैले और पृथु महाराज का, और पृथु का अर्थ ही होता है पृथुल विस्तृत, संपूर्ण प्रजा संपूर्ण सृष्टि पृथु महाराज के जस को गाता था। इसलिए इंद्र ने कुल मिलाकर के यदि अच्छा काम किया होता तो भगवान के साथ क्षमा मांगने आया था। शर्म आ रही थी इंद्र को, कैसे चलूं पृथु महाराज के पास, तो भगवान से कहा आप प्लीज साथ में चलिए, आप रहेंगे तो कुछ खतरा नहीं होगा। सब मिल करके अच्छा नहीं किया इंद्र ने। और एक बार का नहीं, आप शास्त्र पढ़िए, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, बार बार इंद्र को ये इस तरह का होता है। चपरासी भी एक बार बन गया तो कुर्सी छोड़ने में तकलीफ होती है, बेचारा स्वर्ग का आसन है सबसे बड़ा हिलने लगता है, प्रभु जी 9-10 पूरा हो गया, यहीं पर विराम करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे राम क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा।